पंचदशी प्रकरण के उत्तस्थ दीप प्रकरण का 51 श्लोक। जगत तदेक देशाख्य समारोप्यस्य भेदतः तत्त्वं पदार्थौ भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकताचितेः। जगत् तदेक देशाख्य समारोप्यस्य भेदतः तत्त्वं पदार्थो भिन्नोस्तो वस्तुतस्त्वेकताचितेः। जगत् तदेक देशाख्य समारोप्यस्य भेदतः। जगत उसका एक देश है, आपका जीव। जगत बोलते हैं जड़ चेतन को, है ना। तो जड़ हो गया, चेतन मतलब कि आपका जीव। जगत मतलब चराचर, चर हो गया चिदाभास, अचर हो गया प्राण शून्य, ये लेना अर्थ। सब प्राणी को बोलते हैं चर, इसमें प्राण का चलना उच्छ्वास प्रच्छ्वास वह चर कहलाता। हालांकि पूरा जगत चिन्मय है, फिर भी जिसमें प्राण स्पंदन आदि उससे चर कहते, तद शून्य का नाम हो गया चर। तो जगत का एक देश जो जीव है, आख्य बोलते हैं कथन, उसका समारोप होता भेद से। तत्त्वम पदार्थो भिन्नो, तत्त्वम पदार्थ दोनों भिन्न है। तत् बोलते हैं सर्वज्ञ चैतन्य को, और त्वम बोलते अल्पज्ञ चैतन्य को। सीधी बात है अपने समझने के लिए, त्वम मतलब अल्पज्ञ चेतन, अल्प उपाधि अंतःकरण है, और नहीं तत् मतलब कि सर्वज्ञ चेतन माया बड़ी उपाधि, त्वम मतलब अंतःकरण छोटा उपाधि, तो अल्पज्ञ चेतन। भिन्नो भिन्न भिन्न है, ये सब औपाधिक है। भिन्नो स्तो वस्तुतः मतलब पारमार्थतः, तू एकता चिते, चेतन से सब में एकता है, अद्वितीय है, बिल्कुल भेद है ही नहीं। भगवान ने शंख बजा दिया, सब एक है। शंख बज गया, दमू से बड़ा शंख होता है, दोनों दमू ले सकते हैं, चल जाएगा दोनों। तो कल आपने श्रवण किया था कुटस्थ और ब्रह्म की परिभाषा। तो कुटस्थ मतलब क्या हुआ, बिना नकल किए, बिना नकल के बताना। हाँ, देहद्वय और जो आपका चिदाभास, संक्षेप में देहद्वय ले लो, स्थूल और सूक्ष्म। देहद्वय और चिदाभास, इन सबका जो अधिष्ठान चेतन, उसको कुटस्थ कहा गया। और ब्रह्म मतलब कि पूरे ब्रह्मांड चराचर जगत सबका जो अधिष्ठान आश्रय, उस चैतन्य का नाम हो गया ब्रह्म। मतलब समष्टि चैतन्य को ब्रह्म बोलेंगे, व्यष्टि चैतन्य को कुटस्थ। तो व्यष्टि समष्टि उपाधि है, ये हिंदी भाषा ग्रंथों में समष्टि व्यष्टि लिखते हैं। व्यष्टि मतलब एक एक, ईश्वर हो गया ये आपका संपूर्ण जगत जो है, उस जगत का पति ईश्वर है, जो मायापति है, संचार करने वाला ईश्वर। मन लगे कि माया उपाधिक, सीधी बात माया उपाधि। तो वह जो ब्रह्म है ना, वह माया और तत्कार्य दोनों का अधिष्ठान है। माया का भी उसका कार्य हो गया जगत। अविद्या तत्कार, अविद्या मतलब माया, उसका कार्य जो प्रपंच, इन सब का अधिष्ठान का नाम है कूटस्थ। ये बात हो गई थी ना, अब देखो आगे। ननु जगत अधिष्ठान चैतन्यस्य एकत्वात् तत्त्वं पदार्थयो भेदाभावे तत्त्वं पदार्थयो पौनरुक्त्यम इत्याशंक्य तयो औपाधिको भेदो वास्तवम ऐक्यम इत्याह। टीकाकार कहते हैं कि भाई जगत अधिष्ठान चैतन्यस एकत्वात्, या जो जगत का अधिष्ठान चेतन है ना, वह एक ही है, दो तो है नहीं, और जगत के गर्भ में ही आपका है जीव। जीव तो अलग है, उसी के पेट में है ना। ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसका बोल रहे कि आश्रय का नाम ब्रह्म है, और उसी ब्रह्मांड मतलब जगत के अंदर तो एक देश जीव है, उसके गर्भ में मतलब पेट में है पूरा ये जगत हो गया चराचर, और जगत के गर्भ में पेट में भीतर बैठा कौन, जीव। तो फिर एकता किस बात की, वो तो पहले से एक ही है। एकता कथन करना पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, ये शंका कर रहा पूर्व पक्ष। जगत अधिष्ठान चेतन एकत्वात्, अधिष्ठान चेतन एक है, तो तत्त्वम पदार्थों के भेद का अभाव है। कि तत्त्वम पदार्थ में पुनरुक्ति दोष आ जाएगी यदि आप एकता कहेंगे तो। तब उत्तर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, तयो औपाधिको भेदो, दोनों का औपाधिक भेद है। जिस प्रकार घटाकाश और भूताकाश, महाकाश नहीं भूताकाश लेना, हम लोग बोल देते महाकाश पर महाकाश नहीं बोलना चाहिए, भूताकाश बोलना चाहिए। मतलब कि महाकाश तो ब्रह्म की तरह हो गया, जैसे यहां तीन है ना, जीव ईश्वर ब्रह्म तीन है, ऐसे वहां पर भी घटाकाश हो गया जीव की तरह, और भूताकाश हो गया ईश्वर की तरह से, ये भूत उपाधि हो गई। आकाश भी तो भूत है ना, पृथ्वी जलते वायु आकाश, आकाश भूत में आता है, तो भूताकाश। और इन दोनों का आश्रय महाकाश, तो महाकाश निरुपाधिक ब्रह्म के समान है। तो घटाकाश और भूताकाश महाकाश, इधर जीव हो गया ईश्वर और ब्रह्मा। तो जीव का शोधित क्या हो गया आपका, कुटस्थ। ईश्वर का शोधित हो गया ब्रह्मा। ऐसे यहां पर ईश्वर का शोधित हो गया महाकाश, जो भूताकाश है ना, उस भूत उपाधि को हटा देंगे तो आकाश महाकाश। और उधर जीव की उपाधि अंतःकरण को हटा दिया तो कुटस्थ हो गया, इधर घट को हटा दो तो आकाश रह गया। इस प्रकार से यहां पर बता रहे। तो तयो औपाधिको भेदो, जीव और ईश्वर का औपाधिक भेद है, ब्रह्म नहीं ईश्वर का औपाधिक भेद है। जीव और ईश्वर में कभी भी एकता हो नहीं सकती है। ये बार रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जीव ईश्वर की जो एकता करते हो नरक कल्प रौरव नरक, तो जीव ईश्वर की एकता नहीं होती, एकता होती कुटस्थ और ब्रह्म की एकता होती है। क्योंकि जीव अल्पज्ञ उपाधि वाला, अविद्या अंतःकरण उपाधि वाला, ईश्वर माया उपाधि वाला, तो जब तक उपाधि है तब तक दोनों की एकता हो नहीं सकती। एकता होती किसमें, कुटस्थ और ब्रह्म में, दोनों को उपाधि हटाने के बाद। तो औपाधिक भेद है, वास्तवम ऐक्यम इत्याह, वास्तव में एकता है। यही बात श्लोक से बता रहे। जगत तदेक देशाख्य समारोप्यस्य, जगत और उसका एक देश आपका जो जीव है वह जो आरोप भेदतमल औपाधिक भेद है, इसलिए तत्वम पदार्थो भिन्न हो, तत्वम पदार्थ भिन्न हो जाएंगे, तत्वम पदार्थ भिन्न हो जाएंगे। वस्तुतः एकता चिते, वास्तव में चेतन सब में एक ही है। जैसे आकाश सब में एक है, चाहे भूताकाश हो चाहे घटाकाश हो, सब में आकाश एक ही है, ऐसे यहां पर है। जगत तदेक देश इति च आख्या यस्य समारूप्यस्य तत्तथा जातौ एक वचनम्। जगत और उसके एक देश जो जीव है चिदाभास, ऐसी आख्या मतलब कथन है जिसकी, उसको बोलते हैं जगत तदेक देश, देशाख्य बोलते हैं। ऐसा जो समारोप मतलब सम्यक आरोप, समकाद सम्यक अच्छी तरह हम आरोप करते हैं, तत्तथा उसको यहां पर जो भेद है वह औपाधिक है। अब यहां लिखा जातौ एक वचनम, लिखा ना क्या लिखा, जातौ एक वचनम, जाति में एक वचन है, जाति समझते ना, व्याकरण आएगा, नहीं व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक एक सूत्र है पाणिनीय जी का, जात्याख्यायाम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतर श्याम, लोग में आया है जात्याख्यायाम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतर श्याम। जाति का आख्यान मतलब कथन करना हो तो अन्यतर मतलब विकल्प से एक वचन भी होता बहुवचन भी। जैसे कि बड़ा भारी भंडारा है, भंडारा तो भंडारा में हम यह भी कह सकते हैं कि ब्राह्मणम आनयध्वम, ब्राह्मण को लाओ, तो ब्राह्मण मतलब संपूर्ण ब्राह्मण जाति, और ब्राह्मणा ही बोल सकते हैं कि ब्राह्मणों को लाओ, दोनों बोल सकते हैं क्योंकि तो ब्राह्मण शब्द जाति परक है, बहुवचन भी चल जाएगा। हिंदी में बोलते हैं ना सभी ब्राह्मणों को लाओ, या बोलते हैं ब्राह्मण को लाओ, दोनों बोलते हैं। चूंकि ब्राह्मण शब्द जाति वाचक है तो जाति में आप एक वचन ही कर सकते हैं, बहुवचन भी आपकी इच्छा के ऊपर है, वैसा नियम नहीं एक ही वचन। ऐसे यहां पर जीव है तो जीव एक समूह का वाचक है, जीव एक किसी व्यक्ति इसका वाचक नहीं, तो सभी जीव एक वचन कर सकते। अब जगत है, जगत में बहुवचन कर सकते और एक वचन भी चल जाएगा, कोई जगत सबका वाचक समूह का है। तो जाति का वाचक हो वहां पर आप वैकल्पिक दोनों प्रयोग कर सकते अपनी मर्जी के अनुसार, एक वचन भी बहुवचन भी। जातिया ख्याम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतर श्याम, दोनों होता। ये तो पाणिनीय जी की जाति हो गई, न्याय की जाति क्या बोल रहे थे आप, नित्यत्वे सति अनेक समय तत्वम जाति, ये पहली क्लास के पुस्तक में है। जो नित्य होता हुआ अनेक में समवाय संबंध से रहे उसका नाम जाति है ना, जाति मतलब नित्यत्वे सति, ये वेदांत से नहीं घटेगा केवल न्याय से। जो नित्य होता हुआ अनेक में समवाय संबंध से रहे, घटत्व। अब घटत्व अनेक घट व्यक्ति में वह जो जाति रहती है, अनेक घट व्यक्ति, व्यक्ति मतलब हाँ ठीक वस्तु, व्यक्ति शब्द का हिंदी में अनुवाद है वस्तु, न्याय लो जिसको व्यक्ति कहते ना उसको हिंदी में वस्तु कहते, चीज कहते। तो जितने भी घट व्यक्ति हैं, घट वस्तु हजार लाख, सभी घट व्यक्ति में एक घटत्व जाति रहती है। तो घटत्व जाति क्या हुए, नित्य, नित्य होती हुई अनेक में रहे उसका नाम जाति। और जाति व्यक्ति का समवाय संबंध होता है, नित्य संबंध होता है। नित्य संबंध का नाम है समवाय। और संबंध कितने में होता है? दो में, चार में, दस में, एक में, कितने में होता है? हाँ, मतलब एक से अधिक, चाहे दो हो, चार हो, दस हो। अब संबंध एक में थोड़ा होगा, दो होना चाहिए या चार हो, न दो से अधिक हो। संबंध हमेशा दृष्ट होता है, दो में होता है, एक में नहीं होता है। पर वेदांत में तो असंग पुरुष है, वहां जरूरत नहीं संबंध का। वहां तो एक ब्रह्मी नित्य है, सब अनित्य है, तो वहां जाति माति की जरूरत नहीं है। वहां जाति पाति कुछ नहीं चाहिए, तो ब्रह्म बढ़िया है ना। ब्रह्म में कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं। वेदांत के द्वारा ही पूरे विश्व में एकता अखंडता अमन चैन शांति स्थापित हो सकती है, और किसी धर्म के द्वारा नहीं हो सकता। वेदांत धर्मा धर्म से ऊपर की बात करता है, मीमांसा तो धर्म तक पहुंचाता है, पूर्व मीमांसा। पर आपका वेदांत दर्शन क्या करता? तय धर्मम अधर्मम च, आगे ये न त्यति तत्त्यज। जिस अहंकार से त्याग, तो उस अहंकार को भी छोड़ो। मान ले कि वेदांत केवल एक मेवा अद्वितीय चेतन को लेकर चलता है, वह अद्वितीय है, अखंड है, सब में एक है, दो नहीं है, और वो शांत है, उसमें हलचल नहीं है, आनंद स्वरूप है, ऐसा आपका वेदांत तत्व बताता है। सांख्य की मुक्ति तो है, पर उसमें आनंद नहीं है, वो जड़ रूप है। सांख्य दर्शन का या योग का जो समाधि मोक्ष है ना, तो वह आनंद नहीं। वहां तो मात्र प्रकृति पुरुष दोनों का अलग अलग ज्ञान हो गया। प्रधान पुरुषयो अन्यता ख्याति विवेक। प्रधान पुरुष का जो पार्थक्य ज्ञान है ना, कि ये प्रधान है, ये पुरुष है, ऐसा ज्ञान होने से मोक्ष होता है। अब पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, वह आनंद नहीं आएगा, तो किस काम का मोक्ष आनंद रहो? और न्याय का मोक्ष और अलग है। वो क्या कहता मालूम? सबको कंठ होना चाहिए, पुराने श्रोता है। एक विंशति दुख ध्वंसो मोक्ष। 21 दुख के ध्वंस का नाम है मोक्ष, तो वह आनंद नहीं होता। 21 दुख जानते हैं ना, ये आपकी पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच इनके विषय है ना, और पंच जो इनका संबंध प्राण नहीं मोक्ष का विषय है। ये छह मानते मन को, लेकिन न्याय छह मानता है। छह इंद्रियां, छह इंद्रियों के विषय 12 हो गए, छह इनके संयोग 18 हो गए, और शरीर 19 हो गया, सुख दुख 21, इनको 21 बोलते हैं, सुख दुख भी है। इंद्रिया मन में दो धर्म है, इंद्रियत्व भी है, मनस्त्व भी है। तो मनस्तेन सुख दुख का साक्षात्कार होता है, इंद्रियत्वेन आंतर प्रत्यक्ष होता है। ये न्याय दर्शन की विशेष कथन है कि मन में दो धर्म है, मनस्त्व और इंद्रियत्व। तो इंद्रियत्वेन मन सभी के प्रति सामान्य कारण है, और मनस्तेन सिर्फ मन सुख दुख का भोगता है, सुख दुख का अनुभव करता। तो छह इंद्रियां इनका विषय, जैसे रूप रस गंध स्पर्श आदि विषय, और मन का चिंतन विषय हो जाता है, छह विषय हो गए, और छह का जो संयोग आपस में, ये संयोग भी होगा तो खटपट चलता रहेगा, ये संयोग भी नष्ट हो जाता है, संबंध भी नष्ट हो जाता है, और शरीर सुख दुख, इनके ध्वंस का नाम है मोक्ष, वह आनंद नहीं होता। ऐसा मोक्ष आया ही नहीं। वो आनंद मानते जानते किसका है? आनंद है आपके आत्मा मन के संयोग से होने वाला गुण, जो आनंद है ना, वो आत्मा का स्वरूप नहीं, गुण है। और जब उनके मोक्ष में संयोग होना नहीं, तो आनंद कहां से आएगा?
समझे कि नहीं?
वह जो आनंद है वह गुण है। किसका गुण है? आत्मा का विशेष गुण। और कब होगा? जब मन के साथ संयोग होगा, इसे जुड़ेगा। हाँ, तो संयोग ही नहीं रहेगा। परंतु अपना मोक्ष ऐसा नहीं, अपना मोक्ष आनंद स्वरूप है। बिल्कुल, अपना मोक्ष आत्मा मन से जायमान वह आनंद नहीं है, बल्कि स्वतः सिद्ध आनंद है। आप तर्शन में पढ़ते ना, ज्ञानाधिकरण आत्मा, पढ़ाते कि नहीं? आत्मा अपने ऐसा नहीं बोलते, ज्ञान स्वरूप आत्मा। आत्मा कैसी है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानाधिकरण आत्मा नहीं। वो तो बच्चे को पहले टॉफी देते हैं, जाओ बेटा ये मीठा मीठा चॉकलेट है, टॉफी है, तो विद्यालय जाता है ना, ये खिलौने का देते हैं लालच। बाद में जब आनंद आता है तो बिना टॉफी बिना खिलौना का अपने आप जाता है कि नहीं? ऐसे पहले वो लालच देते ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान के आधार का नाम आत्मा है। पर अपने यहां क्या बोलते हैं? ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ये दोनों में अंतर है। चलो जी आगे। तो मोक्ष किसका बढ़िया बताओ? मोक्ष न्याय का, सांख्य का, वेदांत का? वेदांत बिल्कुल आनंद स्वरूप मोक्ष है, परमानंद, अशेष विशेष दुख की निवृत्ति। हाँ, अब परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। मोक्ष मतलब अशेष विशेष दुख की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। अशेष मतलब सामान्य, विशेष मतलब तत्तद उपाधि से सामान्य। व्यवहार में होता है ना कि कई बार आपका विशेष दुख तो दूर हो गया, विशेष दुख बोलते हैं कि तत्तत् कामना की पूर्ति के अभाव से होता है, और कामना पूरी हो गई तो दुख तो थोड़ी देर के लिए दूर हो गया, फिर सामान्य दुख बना रहता। तो अशेष मतलब कि सामान्य, और विशेष मतलब जो इंद्रिय अभिषेक के संकर्ष से जायमान, जो विशेष सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति, मतलब संपूर्ण दुखों से छुटकारा, समाधान। सामान्य मतलब सामान्य विशेष दोनों प्रकार के दुखों से छुटकारा, और परम आनंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। पर लोक गमन मोक्ष नहीं है, वहां जाना नहीं। सातवां आसमान, सातवां आसमान जाने का मोक्ष नहीं है, बल्कि मोक्ष कैसा व्यापक है। न तस्य प्राणा क्या है? उत्क्रामंती ब्रह्म विषण ब्रह्म आप्येति। ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। ज्ञानी के प्राण तो उपाधि के विलय होते ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते। अब जो प्राण है ना, पंचभूतों का रहे, वायु का, वायु में विलय हो जाएगा। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, अपनी तन मात्रा में विलय हो जाएंगी। रूप रस गंध स्पर्श तन मात्रा में इंद्रियों का विलय हो जाएगा। प्राण का अपने वायु में विलय हो जाएगा। स्थूल शरीर का पंचभूत में हो जाएगा। तो जो ज्ञानी है उसके प्राण उत्क्रमण, हाँ ज्ञानी भी करते हैं, अज्ञानी के प्राणों को उत्क्रमण होता है। पुनः कर्मानुसार तत्तर योनि में जाएंगे, वहां पर पुनः अपने कर्मों का उपभोग करेगा। पर ज्ञानी कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लिए, इसलिए उत्क्रमण नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद स्वरूप। तो जहां वही पर परम आनंद का अनुभव, क्योंकि ब्रह्म व्यापक, इसलिए भी व्यापक हो जाता है, परिच्छेद का भाव हो जाता है। तो मोक्ष बढ़िया वेदांत का है ना, इसमें कोई समस्या नहीं। और जो मोक्ष है ना, सापेक्ष है। हाँ, चाहे सायुज्य हो, चाहे सालोक्य हो, चाहे सारूप्य हो, चाहे साष्टित्व हो, वह आपेक्षिक है, कभी न कभी लौट के आना पड़ेगा। देखो, सालोक्य मोक्ष को बेचारे जय विजय ने प्राप्त किया था। जय विजय ने सालोक्य, सालोक्य ने बोले सामीप्य था, क्या था? सामीप्य था ना। सालोक मतलब लोक में निवास, और उससे ऊपर आपका है सामीप्य, बिल्कुल नजदीक भगवान के, परिकर बन जाना, दास बन जाना, सेवक बन जाना। तो मतलब कि सामीप्य मोक्ष प्राप्त होने के बावजूद भी पहुंच गए सनंदा ऋषि। अब उनको नंग दड़ंग अवधूत देखा, कहा भाई दर्शन करना है, बोले अभी दर्शन नहीं होगा, अभी टाइम नहीं हुआ है, भगवान अभी योग निद्रा में है। बैठ गए थोड़ी देर पास में, इतने बड़े बड़े देवता आए, वो अंदर चले गए। तब क्रोध आ गया, बोले अच्छा तुम समता के स्थान बैकुंठ में रहते हो, विषम स्वभाव, तब जाके कुपित होकर श्राप दे दिए। अब बेचारे को धड़ाम से गिरना पड़ा, मत लोग में आना पड़ा। तो बताओ ऐसा मोक्ष किस काम का? सामिप मोक्ष प्राप्त होने के बावजूद भी जय विजय, जो भगवान के बड़े प्यारे पार्षद थे, अंगरक्षक थे ना, दोनों को मर्त्यलोक में आना पड़ा। यही नहीं बल्कि उनको राक्षस बनना पड़ा, है ना? हाँ, रावण, कुंभकर्ण, दंत वक्त, शिशुपाल और क्या बने, हिरण्यकश्यपु, तीन बार अवतार लेना पड़ा। तो ये जो मोक्ष है ना आपका, समझो सापेक्ष है, और ये निरापद नहीं है, इसमें आपद है। सामिप में भी, सालोक में भी, साचित में भी, सायुज में भी, सब में कोई न कोई आपत्ति है। हाँ, द्वैत है ना, द्वैत बना हुआ है, उसमें ईर्षा भी होती है। अरे देखो इसको कितना सम्मान, मुझे पीछे बैठना पड़ता है, होता है कि नहीं? आप लोग को नहीं होता है, वेदांति बात अलग है कि पीछे ही बैठ जाते हैं आप लोग, बात अलग है। परंतु तो वहां पर होता है स्वर्ग आदि लोकों, ब्रह्म लोकों में। तो यह जो मोक्ष है सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है, निरापद नहीं बल्कि आपद युक्त है। जय विजय के श्राप से बात ज्ञात होती है। परंतु पंचमी जो कैवल्य मुक्ति है ना, इसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, आत्यंतिक मोक्ष है, जिसमें द्वैत का बिल्कुल अभाव है, परम आनंद की है, वही मोक्ष अच्छी चीज है। उसी की कहानी आप सुन रहे हैं, है? देह मुक्ति मतलब कि शरीर छूटने के बाद, और जीवन मुक्ति मतलब जीते जी आप बिल्कुल परम आनंद को उपलब्ध हो गए। कई बार आदमी को ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्धानुसार जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलता है। आपको मोक्ष तो हो गया, ज्ञान तो हो गया, परंतु प्रारब्धानुसार आपको संसार में समस्या दुख से उलझना पड़ता है। तो शरीर छूटने के बाद जो मोक्ष होगा उसका नाम होगा विदेह कैवल्य, विदेह मुक्ति। और जीते जी जैसे जड़भरत हो गए, जीते जी सुखदेव जी, जीते जी हो गए सुखदेव जी, जनक महाराज है ना, और जड़भरत जीवन मुक्त है, जीते जी परम आनंद में डूबे हुए हैं। वो जीवन मुक्त, उसको ज्ञानी तो है पर जीवन मुक्त नहीं है, मतलब जीवन के प्रारब्ध से बेचारा सुखी दुखी हो रहा। हाँ, विदेह मुक्त हो जाएगा, उपाधि हटी, परम आनंद को उपलब्ध हो गया। परंतु प्रारब्धानुसार कई बार ना सुखी दुखी होना पड़ता है, तो उसका विदेह मोक्ष होता है, ऐसी व्यवस्था है। इसमें दो मत है, कुछ आचार्य तो मानते हैं कि भाई जीवन मुक्ति हो नहीं सकती है क्योंकि प्रारब्ध बना रहता है, और कुछ आचार्य कहते हैं जीवन मुक्ति हो जाती है, दो मत है। हाँ, वो तो फर्क तो पड़ेगा ही। इसलिए वेदांत में आपने श्रवण किया होगा, एक जीववाद अनेक जीववाद मत है, एक जीव अनेक जीव। तो एक जीववाद वाले कहते हैं ना कि जो है ना जीवन मुक्ति हो नहीं सकती, एक ही जीव है, उसका नाम हिरण्य गर्भ है, मुख्य जीव है, और हम आपके यहां जीवाभास है। एक जीववाद का सिद्धांत है, मुख्य जीव हिरण्य गर्भ ही है, और हम आप सब क्या है, जीवाभास हैं, और उसके मुक्ति से सबकी मुक्ति हो जाएगी। और अनेक जीववाद है कि भाई ज्ञान हो गया मोक्ष हो गए, इसमें जीवन मुक्ति बन जाएगी, पर एक जीववाद में जीवन मुक्ति नहीं बन सकती है। दोनों विचार है, कैसे गलत हो गया। हाँ, कोशिश तो आप कर रहे हैं, कोई आपका मतलब नहीं। ये छोटे बच्चे घर में ना खेलते हैं, कूदते हैं, लड़ते हैं, फिरते हैं, तो माता पिता कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा उसको चॉकलेट देते हैं, थोड़ा सलाह देते हैं। जिस घर में 10-15 बच्चे छोटे हैं ना, आपस में लड़ते भी है, झगड़ते भी हैं, रोते भी है, फिर मिल जाते हैं, फिर हंसते हैं, होता है कि नहीं घर में। ऐसे सारे जो जीव है ना, बच्चे के समान एकदम आभास है। मुख्य जीव तो हिरण गर्भ एक ही जीव है, उसके मुख से सबको मुक्ति मिल जाएगी, ये उनका सिद्धांत है। हाँ उसके, हाँ उसके बाद सबकी मुक्ति हो जाएगी। हाँ हाँ, तो उनके सिद्धांत से नहीं है ये, तो अनेक जीववाद के सिद्धांत से है। नहीं, वो भी ठीक है ना भाई, एक जीव है जो वो मुक्त हो गया, सब उसके साथ मुक्त हो गए है। होता क्यों नहीं, हो सकता, होने में क्या है, हो सकता है ना भाई। हम लोगों को अस्तित्व है नहीं, मुख्य जीव है एक, हिरण्य गर्भ एक मुख्य जीव है। हम सब छोटे छोटे जीवावास है, जैसे समुद्र में ना तरंगे होती हैं, तरंगों से बुदबुद होता है, तो तरंग के समान मुख्य जीव हिरण गर्भ हो गया, हम लोग बुदबुद के समान छोटे छोटे हो गए, तो कोई अस्तित्व नहीं है। बुदबुद कभी बना कभी बिगड़ा, हवा आई तो बन गया, दूसरी हवा से बिगड़ गया, ऐसे ही है। तो मेहनत आप कर रहे हैं अपने लिए ना, ये उसका मतलब। जमेगा नहीं, जम जाएगा, धीरे धीरे जम जाएगा वो भी, क्योंकि आप अनेक जीववाद कथा सुनते हैं ना, सिद्धांत ले संग्रह में अनेक जीववाद की एक जीववाद कथा अच्छी तरह बता रखी है। अनेक जीववाद में चित्त का ज्ञान होने के बाद चिदाभास का बात हो रहे हैं, चिदाभास का उपाधि की विलय हो जाएगी, उपाधि रहेगी तो खटपट चलता रहेगा। जैसे सुषुप्ति में जाने के बाद मन का विलय हो जाता है, और मन रहेगा तो खटपट होता है कि नहीं, आंख खुली महीना खटपट शुरू, और सोने के बाद मन का विलय हो जाता अपने कारण अविद्या में, तो वहां बिल्कुल शांत 4-6 घंटा कुछ पता नहीं क्या हो रहा दुनिया में, होता है कि नहीं। जब आप 4-6 घंटा सुषुप्ति में सब कुछ छोड़ सकते हैं, मन को, इंद्रियों को, संसाधन को, धन दौलत को छोड़ दे कि नहीं अपने आप, तो छोड़ने के बाद कुछ खोते हैं कि कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, एनर्जी, पावर, ऊर्जा, स्फूर्ति, ताजगी, ये सब चीज मिलता है ना। ऐसे ही यदि आप 2-4 घंटे भजन ध्यान समाधि में सब छोड़ देना, तो आनंद मिलेगा, कुछ खोएगा नहीं। पर आदमी वो छोड़ता नहीं, वो ध्यान करेगा तो मन ही राम उधर चला जाएगा, होता कि नहीं बताओ ईमानदारी से। हाँ होता है। तो आपको ध्यान समाधि में सुषुप्ति के समान कुछ क्षण के लिए सब कुछ को आपको मिटा देना है, विसर्जित कर देना है, तब परम आनंद का अनुभव होगा। विसर्जन होना चाहिए, मुख्य ही है। आगे देखिए। हाँ, चतुर्थ में तो ज्ञान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए शुभेच्छा है, विचारणा, तनुमानसा, तो 3 भूमिका साधक की है और आगे की 4 सिद्ध की है। सत्वापत्ति में ज्ञान हो जाता है, अब सत्वापत्ति के बाद आगे उस पर निर्भर करता कि पदार्था भावनी है कि तुरियगा है कि असन शक्ति है, उसके ऊपर निर्भर करता है। बस सत्वापत्ति में ज्ञान हो जाएगा, तो 4 आगे सिद्धा अवस्था है और 3 साधक की अवस्था है, तो सत्वापत्ति में ज्ञान हो जाता है। अब ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध है तो परोपकार में लग सकता है, प्रारब्ध नहीं, क्योंकि देखिए उसका व्यष्टि जो अंतःकरण है ना, समष्टि चेतन के साथ मिल जाता है, तो समष्टि चेतन में संकल्प होगा, उसके संकल्प से व्यक्ति में संकल्प होकर परोपकार कार्य में लग सकता है, तो फिर सत्वापत्ति तक ही रहेगा। और यदि प्रारब्ध नहीं है तो असंत शक्ति में जाएगा, फिर पदार्था भावनी में बिल्कुल स्वरूप में। तो रेगा में तो कहते शरीर लंबे समय तक रहता ही नहीं। हाँ हाँ अधिकार, हाँ चौथे के बाद व्यष्टि अंतकरण का विलय समष्टि चेतन में मिल जाता है। तो जो वहां संकल्प होगा उसी के संकल्प से यहां पर संकल्प होता है, अपने आप नहीं होता। जैसे कि जो पत्नी पतिव्रता है, पति के संकल्प से काम करती, ऐसे ही इसका व्यष्टि अंतकरण का विलय समष्टि में हो जाता है, तो उसके संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। हमारा आपका नहीं होते हैं, दिन भर संकल्प करो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, होता है कुछ नहीं होता। संकल्प खूब करते आप, ऐसा हम करेंगे वैसा करेंगे, परंतु कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपका अंतकरण जो व्यष्टि अंतकरण समष्टि से जुड़ा नहीं है। जो उससे तार जोड़ देंगे ना तो सब काम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास खजाने की कमी नहीं है। अचिंत शक्ति सामर्थ्य वाला परमात्मा है, उससे जब अंतःकरण जुड़ जाएगा तो आपके संकल्प भी सत्य संकल्प सत्य काम भाव रूप हो जाएगा। नहीं रहता, उसका विलय हो जाता है। नहीं, अपना पराये की बात नहीं, वो विलय हो गया ना समष्टि में। हाँ हाँ उसके ऊपर हो गया, हाँ उसके ऊपर है, सब उसके ऊपर, हाँ सब उसी के ऊपर हो गया, समष्टि के ऊपर। हाँ हाँ ऐसे बहुत हैं संसार में, अनंत हो गए, जनक महाराज हो गए, अर्जुन देखो अर्जुन, अब अर्जुन के अंतःकरण पर भगवान का अधिकार, भगवान जैसी प्रेरणा करते अर्जुन वैसा ही करते, फिर भी करते। अर्जुन की इच्छा संग्राम करने के नहीं, पर ईश्वर की प्रेरणा ईश्वर की इच्छा सब करना पड़ा, ऐसे आप हाँ जुड़ गया। ऐसे ऐसे आपको होना चाहिए, अपने अंतःकरण को भगवान से जोड़ देने का। थोड़ा तो समय तो लगता है, पर जोड़ना चाहिए, उसमें फायदा है नुकसान नहीं। अर्जुन ने अंतःकरण को जोड़ा परमात्मा से, तो उसको फायदा ही हुआ, नुकसान तो हुआ नहीं। ऐसे अपने अंतःकरण को समष्टि चेतन के साथ जोड़ने में विलय करने से आनंद ही आएगा, इसमें कोई क्षति नहीं। शुभेच्छा, विचारना कह सकते, विचारना दूसरी सीढ़ी पहुंच गए, अब इसके बाद तनु मानसा में पहुंचना है आपको, विचारना से तनु मानसा, तनु मानसा। तो विचारना तक तो आप पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है विचारना। पहले शुभेच्छा, फिर विचारना, विचार सत्शास्त्र का, आत्मा अनात्मा का। तो बहुत प्रोग्रेस किया आप लोगों ने, खाली आप लोग नहीं, जो सुनते हुए भी समझ समझना है कि हम ही लोग हैं, जो नेट से सुनते हैं घर बैठे सुनते, वो भी थोड़ा थोड़ा पहुंच गए। पूरा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मानना पड़ेगा। पूरा तो जब सामने बैठेगा ना तब मालूम पड़ेगा, वो भी पहुंच गए। आगे देखिए, ननु चिदाभासस्य सुक्तिका रहतादिवत अधिष्ठान आरोप्य उभय धर्म वत्वानुलंभात कथम आरोपितत्वम इत्याशंक्याः। जो चिदाभास है वह कैसा, तो अधिष्ठान दे रहे सुक्तिका रजतम, सीपी और चांदी के समान। सुक्तिका बोलते सीपी को, समुद्र किनारे वो एक सीपी होती ना काला काला, हाँ तो ऊपर तो चमकता है नीचे काला काला श्याम वर्ण होता है, उसका नाम सुक्तिका है सीपी। तो वह सूर्य की जब किरण पड़ती है चमकता है चांदी की तरह से। वद अधिष्ठान आरोप उभय धर्मत्व, अधिष्ठान का आरोप किया उभय धर्मत्व, अवलंबात मतलब उपलब्ध नहीं होता है, कि कैसे आपने आरोपी तत्व का कथन किया। यहां कारण है कि दो में से एक ही का ज्ञान होगा, यदि आपको सुक्तिका का ज्ञान हो गया बाद हो गया, सीधी बात उसका नहीं होगा। और चांदी की भ्रांति तो सुक्तिका का नहीं होगा, एक साथ में दो का तो होता नहीं। फिर आप कैसे कहते अधिष्ठान चेतन में चिदाभास आरोपित है, जब आरोपित है तो अधिष्ठान का बोध नहीं होगा, सीधी बात। कितना बढ़िया तर्क किया, तर्क बढ़िया इशारों किया, सुनना। अच्छा भ्रांति क्यों होती है आप जानते हैं? भ्रांति, भ्रांति ज्ञान का कारण क्या है? सामान्य अंश का ज्ञान का अभाव होता है और विशेष का आरोप होता है। जो सामान्य अधिष्ठान है ना, उस सामान्य अधिष्ठान के ज्ञान का अभाव होता है और तत्सादृश्य जब विशेष ज्ञान होता है तब जाकर के भ्रांति बनती है। जैसे देखो अधिष्ठान हो गया सीपी, तो सीपी है ना, उस सीपी का ज्ञान न होने से भ्रांति होती है। तो भ्रम का कारण है कि थोड़ा बहुत सामान्य रूप से सादृश्य का ज्ञान होता है, सादृश्य का ज्ञान होगा विशेष के ज्ञान का अभाव होगा। विशेष बोलो अधिष्ठान बोलो बात एक ही है। तो विशेष अधिष्ठान के ज्ञान का अभाव और सामान्य मतलब कि सादृश्य का ज्ञान है, जैसे रस्सी टेढ़ा मेढ़ा, सांप भी टेढ़ा मेढ़ा, तो सामान्य का सादृश्य का ज्ञान हुआ और विशेष रूप से रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तो भ्रांति बन जाती है। ऐसे यहां पर जब अधिष्ठान चैतन्य का विशेष रूप से ज्ञान नहीं होता है तब जाके भ्रांति होती कि मैं संसारी, मैं जीव हूं, मैं मरने वाला, मैं जन्मने वाला, ऐसी भ्रांति होती है, ज्ञान नहीं होता है। सामान्य रूप से यत किंचित ज्ञान है, विशेष रूप से ज्ञान का भाव अभाव है, पूरा ज्ञान है। हाँ थोड़ा बहुत, देखो बिल्कुल अज्ञानी को भ्रांति नहीं होती है। जो बिल्कुल नादा नासमझ बच्चा है ना, जिसने कभी सांप देखा नहीं उसको रस्सी में सांप की भ्रांति नहीं होगी। कभी सांप उसने देखा है, मन में संस्कार है, भय है, तभी जाकर टेढ़े में रस्सी में सांप की भ्रांति होगी। तो सामान्य रूप से थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान के अभाव से भ्रांति होती है। वही बोल रहे कि यहां भ्रांति कैसी होगी, तब यहां बताएं कर्तृत्व भोक्तृत्व का अधिष्ठान देके समझाएंगे, कल श्रवण करेंगे। मद पूर्णमिदम् नात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।